તારીખ 27/8/1998 તત્વાનુશીલનમાંથી સરળતાના આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 694.
ચંદ્રવચનામૃતમાંથી કાલે સરળતા ઉપર થોડી વાત ચાલી હતી. સરળતા ઉપર આપણે તત્વાનુશીલનમાં ભાગ બીજો 82મા પાને આ વિષય છે. આત્મહિતના પ્રયોજન માટે મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં સરળપણું હોવું તે અત્યંત મહત્વનો ગુણ છે. આત્મહિત કે પ્રયોજન કે લીએ મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં સરળપના હોના વહ એક અત્યંત મહત્વ કા ગુણ હૈ. મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં ઓર ભી ગુણ હોતે હૈં, ફિર ભી સરળતા હૈ એ બહોત બડી બાત હૈ. ઓર પ્રયોજન કી સિદ્ધિ કે લીએ ઇનકા મહત્વ જ્યાદા હૈ. સરળતા ઉત્પન્ન હોને સે અનેક પ્રકાર કે દોષ ઉત્પન્ન હી નહીં હોતે. સરળતા કે કારણ સે કિતને દોષ તો જો વક્રતા કે કારણ સે ઉત્પન્ન હોતે હૈ વો ઉત્પન્ન હી નહીં હોંગે. જૈસે સરળતા વાલા જીવ પ્રાય ઝૂઠ નહીં બોલેગા, ક્યોંકિ ઉનકે સરળતા મેં જૈસા હૈ વૈસી બાત કરને કા ભાવ રહેતા હૈ. એસે કઈ પ્રકાર કે જો દોષ હૈ વો ઉત્પન્ન હી નહીં હોતે. ઓર દૂસરે અનેક ગુણ ઉત્પન્ન હોને કા સરળતા મુખ્ય કારણ બનતા હૈ. મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા કે જો કુછ ગુણ હોને ચાહીએ વો ઉત્પન્ન હોને મેં સરળતા મુખ્ય કારણ બનતા હૈ. સરળતા નહીં હોને કે કારણ સે યાને અસરળતા કે કારણ સે આત્મહિત કે વિષય મેં બહુત બડા અવરોધ રહેતા હૈ. ક્યોંકિ મિથ્યાત્વ કો ઓર સરળતા કે સાથ સંબંધ હૈ. અસરળતા બની રહે ઓર સમ્યક કે સમીપ હમ જાય વો બાત બનને વાલી નહીં હૈ. ઇસલિયે તિરિયંજ ગતિ મેં જાના હોતા હૈ બહુભાગ જીવો કો સરળતા નહીં હોને કે કારણ સે. ઓર આખરે અસરળતા કા આખરી અંજામ જો આતા હૈ વો નિગુપ્ત દશા થી વો અસરળતા કા કારણ. ઇસલિયે અસરળતા હોના યાને સરળતા નહીં હોના ये आत्महित के विषय में बहुत बड़ा अवरोध है. यानी कि असरलता वो आत्मगुण को की रोधक है. आत्मगुण उत्पन्न करने में वो ऑब्स्टेकल है, रोधक है, आड़े आती है असरलता. वास्तव में तो સરળતા બિના કા મુમુક્ષુપના જો હૈ વો શૂન્યવત હી હોતા હૈ. અગર સરળતા હી નહીં તો ઉસકો મુમુક્ષુ કહેના હી નહીં ચાહીએ, ક્યોંકિ યહાં તો મુમુક્ષુતા હોતી હી નહીં, શૂન્યવત મુમુક્ષુતા હો જાતી હૈ. એસા સરળતા કા ઓર મુમુક્ષુતા કા અવિના ભાવી સંબંધ હૈ. સરળતા કે કારણ સે વ્યવહાર ઓર પરમાર્થ મેં અનેક પ્રકાર કે लाभ होते हैं, तो असरलता के कारण से अनेक प्रकार से व्यवहार और परमार्थ दोनों में नुकसान होता है। व्यवहार में ने जो हमारा गृहस्थ जीवन है उसमें भी सरलता के कारण से लाभ होता है और पारमार्थिक लाभ भी हो सकता है, और सरलता के कारण से व्यवहारिक नुकसान भी होता है। कैसे? कि सरलता के कारण से शांति बनी रहेगी अपने आप को। हम सरलता में रहते हैं तो हमारे परिणाम शांत रहेंगे, पर हम असरल हो जाएंगे हमारे परिणाम अशांत हो जाएंगे, ये बात बनने वाली है। तो व्यवहारिक जीवन में भी ये जो लाभ नुकसान है वो शांति अशांति का लेते हैं, और पारमार्थिक जीवन में तो सरलता का बहुत बड़ी भूमिका है जी। बहुत से हैं, देखो पीछे एक पेज पर है, कितने लिखे हैं देख लेना। वक्रता, कृत्रिमता, आर्टिफिशियलिटी, वचन में और हाव भाव में, कृत्रिमता, दंभ, कुटिलता, मायाचार, दंभ, दंभ मैंने आडंबर, दंभ मैंने आडंबर, दिखाव करना, वो भी असरलता में जाता है, क्योंकि जैसा है वैसा दिखाव नहीं करेगा, अच्छा दिखाव करने का सोचेगा। कुटिलता, माया, छल, कपट, हठाग्रह और जिद के परिणाम, आग्रह के परिणाम और जिद के परिणाम, ये सब असरलता के परिणाम है, वो असरलता को बताने वाले परिणाम है। इतने इतने हैं, और उससे व्यवहारिक जीवन में भी क्लेश होता है। क्या होता है? क्लेश होता है, क्योंकि संसार में तो ऐसी बात है कि आप टेढ़े चलोगे तो अगला भी टेढ़ा ही चलेगा, वो सीधा नहीं चलेगा, आडा लाकड़े आडो बेरे हम कह वैसे। अपने आडा लिए तो हम आडो जाले, हम आडो हारे तो अपने आडा हलवाना, एक सामान्य कैटेगरी में आ परिस्थिति हो, तो सीधा नहीं चलता है तो हम क्यों चले, ऐसा आ जाता है। सामान्य मनुष्य को ऐसा ही होता है, तो व्यवहारिक जीवन में भी असरलता है वो क्लेश का कारण बनती है, और सरलता होती है तो अपने को तो शांति बनी रहती है, अगले का परिणाम हो जाने। इसका संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार से विचार करने योग्य है। सरलता से मध्यस्थता और विशालता की प्राप्ति होती है। देखो अपने वो चालू प्रकरण में दो बात तो चली ही है कि वो आसंगिक आनुषंगिक परिणाम है। अगर सरलता आती है तो जीव का विचार के दृष्टिकोण मध्यस्थ रहता है सरलता के कारण से, कि हमको टेढ़ा नहीं चलना है तो जैसी है ऐसी परिस्थिति को हमको समझना है, और विशालता भी आती है सरलता के कारण से, संकुचितता भी नहीं रहती, जिससे सरल परिणामी जीव किसी भी प्रसंग में अनुचित रूप से पक्षपाती नहीं होता। मध्यस्थ होता है, इसका मतलब क्या है कि पक्षपाती नहीं होता। और यथार्थ विचार शक्ति होने के कारण से, उसकी विचार शक्ति मध्यस्थ और यथार्थ होने के कारण से मध्यस्थ भाव से रहता है तो विपर्यास से बच जाता है, विपर्यास नहीं होता। सरलता होती है तो विपर्यास नहीं होता, यथार्थता रहती है विचार में भी। और सत्य का स्वीकार करने में संकुचितता के कारण से होने वाला नुकसान से भी बचता है। मैंने सत्य का स्वीकार करना या अपने स्वरूप का स्वीकार करना, उसमें संकुचितता रहती है तो वो बात नहीं बनने वाली, स्वीकार नहीं आएगा, वो एक अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और वो बच जाता है। जैसे हमारे संप्रदाय में कुछ रूढ़िगत बातें चलती हैं और उसमें नुकसान भी होता हो, इसको छुड़ाने के लिए कोई नई बात आती है तो सरलता वाले को तो उसमें लाभ कहाँ है वही दिखने में आएगा, अरे ये तो लाभ का कारण है, वो स्वीकार कर लेगा। जो संकुचित दृष्टि वाला है वो देखेगा हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, लाभ नुकसान उसकी नज़र में आएगा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, हम ऐसा करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमारे लोगों में तो ऐसा ही चलता है, ये बात बनती थी। जैसे हमारे यहाँ एक दृष्टांत दे दे, ये पर्युषण पर्व के दिनों में उछामणी चढ़ावा होता है, अभिषेक का, आरती का, घी का, जो भी क्रिया पूजा का। हमने हमारे यहाँ वो पद्धति बंद कर दी थी, कोई चढ़ावा बढ़ावा नहीं करने का, कोई उछामणी नहीं बोलने का, शुरू से ही हमने फेरफार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा भाई हमारे तो सब जगह ऐसा ही चलता है, जहाँ चलता है वो चलने दो, अपने को गुण दोष से मतलब है, परिणाम में क्या होता है वो देखो, कि हमको इससे आगे जाना है और बोली लेना है, आगे की बोली लेना है, इससे ज़्यादा बोलना है, फलाना बोलता है इससे आगे हम लेंगे, आज तो उसको वारी नहीं आने देंगे, वो है परिणाम बिगड़ते हैं। तो हमने एक पद्धति बना ली कि जिसको भी आरती का घी बोल लिखाना है लिखा दो, एक मण भी लिखा सकते हैं, 51 मण भी लिखा सकते हैं, 101 मण भी लिखा सकते हैं, कितना भी लिखा हो कोई देखेगा नहीं, जितना नहीं लिखाना हो तो ठीक है, लिखाना हो तो ठीक है जाओ। हम सोचा कि ट्रस्ट में शायद पूरी आमदनी नहीं होगी तो रुपया की 12 आनी तो होगी, हाँ लेकिन परिणाम में तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बात उल्टी बनी, रुपया का 12 आने जगह के 1.25 रुपया 1.5 रुपया आने लगा, क्योंकि सबकी भावना के बारे आई, भावना सबको होती है, किसी को तीव्र, किसी को मंद, किसी को परिस्थिति वश, जिसको भी जैसा भाव हो लिखा दो। हमने देखा कि यहाँ तो और ज्यादा ये तो अधिक आमदनी का कारण हो गया, जैसा हुआ वैसा, हमको वो नहीं गिनना है, हमको गुण दोष से मतलब है। तो संकुचितता होती है तो वो बात दिखने में नहीं आती, गुण दोष वाला सरलता से देखेगा वही समझेगा इसमें लाभ क्या है, इसमें नुकसान क्या है। और कृपालु देव ने सत्संग के, कृपालु देव ने सत्संग के पाठ में 24 नंबर का पाठ मोक्ष माला एक सूचना की है कि सत्संग में सिद्धांत का विचार सरलता से होना चाहिए, अगर सरलता से सिद्धांत नहीं सुविचार किया जाए तो उल्टा विचार होगा। सिद्धांत तो वो है कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने द्रव्य गुण पर्याय में समाप्त होता है। वही सिद्धांत को लेकर के वितरागता भी हो सकती है, और वही सिद्धांत को लेकर के देव गुरु शास्त्र का उपकार नहीं समझे तो अविनय भी हो सकता है, और वही सिद्धांत को उल्टा समझे तो दया धर्म का लोप हो जाएगा। हम दूसरे के दया कर ही नहीं सकते, उसके पर्याय उसके कारण से है, हमारे कारण से नहीं। सिद्धांत तो सिद्धांत है और वस्तु का स्वरूप है वो, और उसका सही सरलता से सम्यक प्रकार से अवलंबन लिया जाए तो वितरागता हो सकती है, और उल्टा लिया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। तो उल्टा क्यों लिया जाता है? असरलता के कारण। इसलिए सरलता से सिद्धांत का विचार करना। ऐसी बहुत सी बातें हैं सिद्धांतों में, तो इतनी उटपटांग बातें हैं कि बिना सत्संग तो समझ में ही नहीं आए। उसका एक मास्टर की भी है, वो है कि एक आत्मकल्याण को मुख्य करके किसी भी सिद्धांत का विचार किया जाए तो ये बात सरलता से समझ में आ जाएगी कि किसी भी सिद्धांत आत्महित के लिए स्थापित किया जाता है। तो यहां से आत्महित कैसे निकलता है वही देखो, ऐसे देखना वही हमारी सरलता है, और उस दृष्टिकोण को छोड़ देना वो हमारी असरलता है। बात खत्म, फिर आपको कहीं भूल चूक होने वाली नहीं, वरना चूक हो जाएगी, और चूक कहाँ हो जाएगी पता नहीं लगेगा। हाँ, सरलता और आत्मकल्याण अविनाभावी है, इसलिए विशाल बुद्धि और मध्यस्थता ये दोनों सरलता से उत्पन्न हुए गुण हैं। चारों गति में तिर्यंच गति के अंदर जीवों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे कम संख्या मनुष्य में है, सबसे ज्यादा संख्या तिर्यंच में है, बाकी के दो गति में नारक से देव ज्यादा है। लेकिन अपर अपना प्रकरण तो सरलता असरलता का चलता है। तो परिभ्रमण करने वाले जीव में सरलता बहुत कम लोगों को होती है, बहुत कम जीवों को होती है, और असरलता बहुत बहुत जीवों को होती है। और इसका सबूत है मनुष्य गति और तिर्यंच गति। सबसे ज्यादा तिर्यंच गति में जीव की संख्या देखने में आती है, वो असरलता के कारण से है। सबसे कम संख्या मनुष्य की है, इसका कारण सरलता है। सरलता बहुत दुर्लभ है, उतनी आसान नहीं है, सरलता रखना वो भी उतना आसान नहीं है। क्यों, कैसे वो बनता है कि हमारे भीतर में जो सुख है वो तो हमने प्रकट नहीं किया, इसलिए हमको अनेक प्रकार की इच्छाएं अपेक्षाएं रहा करती हैं, बाहर में सुख बुद्धि के कारण से, और वो इच्छा सभी इच्छा तो सफल होती नहीं, इतना पुण्य योग सबको होता नहीं। जब हमारी इच्छा से अनुकूल नहीं बनता है तो हम टेढ़ा चलने लगते हैं फिर, हम चाहे ऐसा क्यों नहीं होता है, फिर हम ऐसा करेगा, फिर हम ऐसा करेगा, फिर हम ऐसा, ये बात हो जाती है। इसलिए सरलता रखने में भी पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए, अक्सर पुरुषार्थ चाहिए। ऐसी बात है। चारों गति में तिर्यंज गति के, तिर्यंज गति में जीवों की सबसे अधिक संख्या है, सबसे बड़ी तादाद में कोई संख्या है तो तिर्यंचों की होती है। उसका कारण जीव का तिर्यक यानी तिरछा यानी आडा वक्र असरल परिणामों का ये प्रकट फल है, ये प्रकट फल है कि इस कारण से वो वहाँ चले गए। असरल परिणाम करते करते वो खुद ही हो गए आड़ा पाव से आड़े हो गए, ये बात हो गई। जबकि मनुष्य गति में जीवों की संख्या सबसे कम होती है। तीनों काल संख्या का ऐसा परिमाण, तीनों काल दोनों गति की संख्या का ऐसा जो नाप है, परिमाण मैंने नाम नाप है, यह ऐसा सूचित करता है या इस बात का द्योतक है कि परिभ्रमण करने वाले जीवों में सरल परिणाम से मनुष्यत्व प्राप्त करे इसका प्रमाण बहुत अल्प है। सरलता वाले जीवों की संख्या बहुत अल्प है। मनुष्यत्व की दुर्लभता, ऐसे मनुष्य की दुर्लभपना देख करके इसका परमार्थ क्या? ये बात तो संख्या की हो गई, लेकिन हमने इस पर से तात्पर्य क्या निकाला? तिर्यंज गति में ज्यादा संख्या होती है, मनुष्य गति में कम संख्या होती है, इसका तात्पर्य क्या? कि हमें सरलता की उपासना करनी चाहिए, इसका तात्पर्य वो है। परिस्थिति तो परिस्थिति है तीनों काल कि तिर्यंज की संख्या बहुत, मैंने अनंत अनंत जीव है, तिर्यंज के कितने हैं? अनंत अनंत जीव है, जबकि मनुष्य संख्याता है, असंख्याता भी नहीं है, कितना है? संख्याता है, मैथमेटिक्स के एरिया में आता है, वो बियॉन्ड मैथमेटिक्स जाता है फिगर, ये फिगर अंडर मैथमेटिक आता है, वो फिगर बियॉन्ड मैथमेटिक्स जाता है, इतना होता है। तात्पर्य वो है, उस परिस्थिति का तात्पर्य वो है कि हमको सरलता की उपासना करनी चाहिए, तभी हम मोक्ष मार्ग के समीप जा सकेंगे या उस दिशा में हमारा एक कदम भी उठ सकता है। आगे निर्दोषता, निर्दोष और पवित्र दशा प्राप्त करने का अभिलाषी जीव को सबसे प्रथम स्वच्छंद रूपी महादोष की हानि होने के लिए निज दोष का अवलोकन करना आवश्यक है। सबसे पहले जिसको अनादि स्वच्छंद तोड़ना है, इसको सबसे पहले निष्पक्षपात से, अपक्षपात से अपना दोष का अवलोकन करना आवश्यक है। ऐसा निष्पक्ष अवलोकन कौन कर सकता है? सरल परिणामी जीव ही कर सकता है। बहुभाग तो ऐसा बनता है कि असरलता के कारण से अपना दोष ही नहीं दिखता, अपने दोषित परिणाम पकड़ने में ही नहीं आता, असरलता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि अपने दूषित परिणाम ही पकड़ने में नहीं आता, पकड़ नहीं सकता है। इसलिए बिना हिचकिचाहट स्वच्छंद से परिणाम हो जाते हैं, हिचकिचाहट नहीं आता। जो पवित्रता के और निर्दोषता के अभिलाषी जीव हैं, उनको तो दोष होता है, हिचकिचाहट होता है, वो अंदर में घबराता है, ये बात बनती है, हेजिटेट हो जाता है। ऐसा निष्पक्ष अवलोकन सरल परिणामी जीवी कर सकता है। अपना दोष मिटाने का ये निष्पक्ष रूप अवलोकन है, यह एक रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज वो एक इडियोमेटिक लैंग्वेज है, कहावत है, क्योंकि रामचंद्र जी की धनुष विद्या ऐसी थी कि उसका बाण कभी खाली आ गई, बात खत्म, वो बाण उसको छोड़ता नहीं कहीं भी हो, ऐसी विद्या थी। ऐसे चलते हुए दोष का निष्पक्ष अवलोकन होवे और वो दोष नहीं मिटे, बने ही नहीं, ऐसा एक इलाज है, वरना दोष मिटाना बहुत कठिन है। क्योंकि एक तो पीछे से तो पता चलता है कि अरे मुझे ऐसा भाव हो गया, और आने के पहले पता लगता नहीं कि कब आएगा वही परिणाम, फिर से वही दोष का परिणाम फिर से कब उत्पन्न हो जाएगा, आगे से पता चलता नहीं, और पता चलने के बाद तो होने के बाद तो पता चलता है, करे क्या, मिटाने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए जीव दोष से छूट नहीं सकता, और दोष से छूट नहीं सकता तो परिभ्रमण से छूट नहीं सकता, ये इसका फल है। जबकि अवलोकन होना, चलते हुए परिणामों में अवलोकन होना, ये ऐसा प्रयोग है, इस अवलोकन है वो प्रयोग है, वो ऐसा प्रयोग है जो खाली नहीं जाता है, वो दोष को हानि पहुंचाता ही है, और हानि पहुंचाते पहुंचाते उसको वो खत्म करेगा। परंतु यह सरलता बिना नहीं बन सकता, इतनी सरलता चाहिए। निष्पक्ष में दोष का पक्ष नहीं होना, पक्ष नहीं होना मैंने कि क्या करें, हम तो वितराग तो हुए नहीं इसलिए ऐसा तो होगा ही, वो पक्षपात रूप अवलोकन है, तो खुद को पता है कि मेरे को ऐसे परिणाम होते, लेकिन क्या करें, हम तो वितराग थोड़ी नहीं होते, बचाव के परिणाम, पक्षपात के परिणाम, और गौण करने के परिणाम, ये सब पक्षपात की बात है। या कोई दोस्त बताते हैं तो उसके सामने आर्ग्यूमेंट देना, ये भी पक्षपात है। हाँ वो तो अस्वीकार ही है, वो भी पक्षपात है, अस्वीकार करना वो भी पक्षपात है, आर्ग्यूमेंट देना वो अस्वीकार ही है, और क्या है। हुआ सरलता नहीं रही हमारे यहाँ, अपने ये प्रयोग चलता है दोष को निवेदन करने का, या दोष बताने का, या दोष सुनने का, होता है ना। हमको ऐसा लेना चाहिए, हमारे अभिप्राय में वो बात ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे उपकारी मिलेंगे कहाँ, हमारे पर ऐसा उपकार करने वाला मिलेंगे कहाँ? क्यों कि किसी को भी इसका दोष दिखाएंगे तो वो तो डरते डरते दिखाएंगे क्या? उनका परिणाम तो नहीं बिगड़ेगा, उसको गुस्सा तो नहीं आएगा, उसको खराब तो नहीं लगेगा, उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। लोग तो डरते हैं परिणाम दिखाने में, तो डरते हैं लोग। जब हमारी सरलता होगी तो निर्भीक रूप से बताएगा, हो नहीं हो अलग बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पर वो उपकार करना चाहते हैं, इसके लिए हम बुरा कैसे माने? ये तो हमारी असरलता नहीं है, असरलता है वो, हमारी सरलता नहीं है, असरलता है। और ऐसा ऐसे परिणाम ऐसे तो हमको भी हमारा दोष दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं तो फिर मिटाने का प्रयास होने का तो सवाल पैदा नहीं होता, होता ही नहीं। वो तो मजबूत करे क्या, वो तो अंधा हो जाएगा, अपना दोस्त दिखेगा ही नहीं उसको। और बताया गया तो नहीं ऐसा है ही नहीं, हम तो हमारे में तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा ही उनको लगेगा। सुगमता से स्वच्छंद रूपी अंधत्व से दूर होना हो तो सुगमता से मैंने सुलभ रूप से यानी आसानी से, अगर स्वच्छंद रूपी अंधत्व को दूर करना हो, उस जीव की मति सरल होने से वो ज्ञानी की आज्ञा से चलने की योग्यता प्राप्त करता है। एक दूसरा मास्टर की है ये, ये अध्यात्म विद्या में तो तरह तरह के मास्टर के हाथ में आती है, इतनी सुविधा है इधर। ज्ञानी की आज्ञा में चलना, ऐसी योग्यता किसको होती है? जिसको सरलता होती है, जिसकी मति सरल होती है उसको ही, और उसके पास स्वच्छंद है और उसका अंधापन है, वो दूर हो जाएगा, आसानी से दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा नहीं, आसानी से दूर हो ही जाएगा। आसानी से स्वच्छंद रूपी अंधत्व से दूर होना हो, यह जीव की मति सरल होने से, वह ज्ञानी की आज्ञा से आज्ञा में चलने की योग्यता को प्राप्त करता है। दूसरा नहीं चल सकेगा, सरल परिणामी ही चल सकेगा, दूसरा आज्ञा में आज्ञाकारिता में रह सकेगा नहीं, मेरे से नहीं होगा ऐसा बोलेगा, मेरे को तो उतना हो ऐसा ही चले, वैसा नहीं चले। आत्मा का हित हो अहित हो वो बात गौण हो जाती है, और अपने स्वच्छंद के अनुसार जीव चलना चाहता है वो ज्ञानी की आज्ञा में रहने के योग्य नहीं है। उसके लिए हाँ, उसके लिए खुशी मनाना, हाँ थोड़ी, क्या प्रश्न किया, थोड़ी सरलता हुई और उसकी खुशी मना ली, यानी अहम भाव कर लिया, क्या किया, अहम भाव कर दिया, सरलता कहाँ रही फिर? और बढ़ाने के लिए और सरल हो जाऊं ना, सरलता और बढ़ाने के लिए और सरल हो जाऊं, इसमें अहम भाव करने की क्या आवश्यकता है? थोड़े में ज्यादा मानने से क्या फायदा है? तो नुकसान ही नुकसान है। पर पूर्णता तक पहुंचने का है, शुद्ध उपयोग क्या है? हमारा ध्येय तो पूर्णता का है। देखिए, आपके विचार के अनुसार हमने मान लिया कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, फिर कोई बोलेगा करे ये तो गड़बड़ है आप में, फिर क्या होगा? हाँ, जैसे किसी ने पछाड़ दिया ऐसा लगेगा। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कहीं मुमुक्षुता कहीं मुमुक्षु है, हम तो नायक है ऐसा ले लेते हैं। क्या हम तो नायक हैं? गुरुदेव ने बोला है कि तुम नायक हो, और हमको भी वो बात बैठ गई। तो नायक नायक करके हम सम्यक सन्मुख हो करके सम्यक को प्राप्त कर लेंगे। नायक का रटन तो उच्च कक्षा के भूमिका वाले को ही चलता है। क्या मान लिया? जो उच्च कोटि के मुमुक्षु है वही नायक का रटन कर सकते हैं। अब इसको बोलो क्या आप परिभ्रमण की वेदना में तो कभी आए नहीं, इसलिए मुमुक्षुता का प्रारंभ भी हुआ नहीं, क्या लगेगा? है? जैसे कोई पछाड़ देता है ना, ऐसा लगेगा। किसी ने माथा में मार दिया हो और चक्कर आने लगे, ऐसा लगेगा। ये बात हो जाएगी, अरे ये तो गिनते ही नहीं अपने को, हम तो मान बैठे हम तो बहुत बड़े मुमुक्षु हैं। और उदय भाव में तो कोई ठिकाना होता नहीं, नायक नायक करते रहे और उदय भाव में तो कोई ठिकाना होता नहीं। वही कुटुंब प्रतिबंध, वही खान पीन में रसाना, वही देहात्म बुद्धि को तीव्र करना, ये सब चलता है। ज्ञानी की आज्ञा में चलना या रहना, ये ज्ञान दशा प्राप्त करने का अद्भुत उपाय है। क्या है अद्भुत उपाय? अद्भुत माने क्या? अद्भुत क्यों दिया? एक चमत्कारिक बात है। दूसरी कोई तत्वज्ञान की लंबी चौड़ी बात को नहीं समझे और एक ज्ञानी के आज्ञा में रहना है और ज्ञानी के मार्ग में ही चलना है, उतना पकड़ के बैठ जाए और वैसे ही रहे, ऐसा ही चले, ज्ञान दशा प्राप्त कर लेगा। ये इस विषय का चमत्कार है और इसका जीवंत उदाहरण है सुभाग भाई। वो कोई लंबे चौड़े शास्त्र नहीं पढ़े थे, स्थानकवासी में थे, ईश्वर कर्तावादी में आ गए थे, लेकिन कृपालु देव जब मिले और एक दृढ़ निश्चय बना लिया कि हमको इसके आज्ञा में चलना है, इसके मार्ग पे चलना है, स्वच्छंद से नहीं चलना है, ठीक है। आनंद भाव का छेदन करने वाला सम्यक दर्शन को प्राप्त करके गए यहाँ से, यानी मनुष्य भव सफल कर लिया और एक भव में अनंत भव की कमाई कर ली। एक भव में नहीं, कुछ एक दिनों में ही अनंत भव की कमाई कर ली। जो कृपालु देव उनको इडर ले गए तो वो पिछले 7-8 महीने से बीमार थे, वृद्धावस्था तो थी, जो ताकत 30 साल की उम्र में होती है वो 40 साल की उम्र में नहीं होती, और 40 साल में जो शरीर की शक्ति होती है वो 50 साल की उम्र में नहीं होती, और 50 साल वाली 60 साल की उम्र में नहीं होती, वो तो 70 साल से भी आगे निकल गए थे। तो वृद्धावस्था के कारण से तो कमजोर होता ही है शरीर, और 7-8 महीने से बुखार चलता था। बुखार तो 5 दिन भी चले ने तो मालूम पड़ जाए कि कितनी अशक्ति आ जाती है। 7-8 महीने से बुखार में चलते थे
बहुत कमजोर हो गए थे, एकदम बेड रेस्ट पर आ गए थे, पथारी वश जैसे आपने कहे थे, उसी हालत में कृपालु देव ने बोला कि हमको इधर जाना है सत्संग के लिए। क्या बोले, ये सब टेस्ट है। वो ऐसे नहीं बोले, साहब मेरे तो 7-8 महीने से तो बुखार चलता है, मेरी हालत तो देखो, मैं सफ़र करने लायक हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, पर उस ज़माने में उतनी सुविधा नहीं थी। सायला से 5 मील तक तो गाड़ा में या घोड़ा गाड़ी में जाना पड़े या बैलगाड़ी में जाना पड़े, और रास्ते कोई ऐसे अच्छे नहीं, उबड़ खाबड़, ऐसे तो रास्ते गावड़े के होते हैं, जरक लगे ही लगे, अड़दो एकटलो लगे, मांदा मानस ने कुछ नहीं देखा। आप हमको तारने के लिए आए हैं और हमको तरतरना है, ऐसे मरने वाले तो है ही, अगर नहीं समझेंगे तो पशु की तरह मर जाएंगे, और समझेंगे तो देव हो जाएंगे। देखना है, चल गए इधर। इनके मित्र थे डूंगर सिंह भाई, नहीं आए। बोले कि नहीं, मेरे को तो अनुकूलता नहीं है, स्वास्थ्य की अनुकूलता मेरी नहीं है, वो नहीं आए। वरना तो ऐसे मामले में सबों को साथ नहीं ले जाए। लेकिन उनको लगा कि कृपालु देव को थोड़ा ऐसा लगा, भले वो भी आ जाए, वो नहीं आए। देखो नसीब की बात है, खुश भाग्य भी होना चाहिए ना। बीज ज्ञान की प्राप्ति वहां कराई, पहला संकेत तो था ही, दूसरा संकेत वहां हुआ इधर में, और तीसरा संकेत हफ्ते भर में सायला आने के बाद हो गया। जाओ, कुछ एक दिनों में अनंत भाव की कमाई किया, कितनी उपकार बुद्धि हुई होगी देख लो, कितनी उपकार बुद्धि आई होगी। ज्ञान दशा प्राप्त होने का यह अद्भुत उपाय है। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा के लिए जो तत्परता होती है, आज्ञा मुख से हुई और शब्द को झेल लिया, मुख से तो निकल गए और बीच में ही झेल लिया, गिरने नहीं दिया, जमीन पर गिरने नहीं दिया, उतनी जिसकी तत्परता है वो तो सरल परिणाम जीव को ही हो सकते हैं, दूसरों को नहीं हो सकती। अतः उसे ज्ञानी पुरुष का बोध अवधारण करने की क्षमता प्राप्त होती है। क्षमता मैंने शक्ति, एबिलिटी उसको ही होती है जिसको सरलता होती है, और आज्ञा में रहने की जिसकी योग्यता होती है, उनके इसका बोध को अवधारण करना, मैंने अमलीकरण में ले जाना, उसी को ही इतनी शक्ति होती है, प्राप्त होती है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन और बहुत सी बाह्य क्रिया से जो लाभ नहीं होता, यह लाभ सरल परिणामी मुमुक्षु को ज्ञानी के मार्ग में चलने की दृढ़ निश्चय से होता है। यह सम्यक दर्शन का लाभ है। अगणित शास्त्र पढ़ डालो और कितनी भी क्रिया, कठिन से कठिन क्रिया करो, ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। और वो सब हम कर चुके हैं अनंत बार। नवमी ग्रह गया, द्रव्यलिंग धारण करके अनंत बार ग्रह को उपजायो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। वहां से फिर अधोगति में जाना हुआ। देखो मतलब की बात तो सबको समझ में आती ही है, बताइए किसको नहीं समझ में आती है? मतलब की बात किसको समझ में नहीं आती है वो बताइए। हाँ आपने पिताजी से कुछ मांगा और उन्होंने बोला कि अभी नहीं, आप क्या समझे बताइए। हाँ के वो हमारा काम करना चाहते नहीं है, समझ में आ जाता कि नहीं आ जाता? देर लगती है क्या? सब समझ में आता ही, मतलब की बात सबको समझ में आती है। क्यों? कि संगनी प्रयोग संगनी पंचेंद्रिय जीव को इतनी शक्ति होती ही है, सरलता नहीं है तो नहीं समझ में आती है, सरलता है तो समझ में आ ही जाती है। क्योंकि सरलता से आत्मकल्याण सूझता है। आत्मकल्याण की बात समझ में नहीं आए तो सरल परिणाम ही नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आए। सरल परिणाम को तो समझ में आए आए और आवे ही। जीवन में एकमात्र आत्महित का लक्ष्य बांधना जीवन में शेष आयु जो भी बाकी रहा हो, भरोसा तो नहीं है किसी का, उसमें एक आत्महित ही करना है। दूसरी बातें सब गौण है, जो भी उदय आएगा कुछ करना पड़ेगा वो तो गौण है, बाकी काम तो एक ही हमको करना है। यह पारमार्थिक सरलता है। क्या है? यह पारमार्थिक सरलता है। तो ज्ञानी का दृष्टिकोण में वो बात समझ में आती है कि इस जीव को क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको अभी क्या चाहिए क्या चाहिए। हाँ बहुत बस एक लक्ष्य बना देना कि हमको आत्मकल्याण के सिवा अब कुछ करना है ही नहीं, इसके लिए जो जो कुछ करना है वो करना है और नहीं करना है वो नहीं करना है, बस ये पारमार्थिक सरलता होगी। सबसे बड़ी सरलता वो है, छोटी मोटी सब सरलता में भी ये पारमार्थिक सरलता है। और ज्ञानी इसको देखते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। ऐसी पारमार्थिक सरलता का बहुत बड़ा फल है, इसका फल भी बहुत बड़ा है। इसका मूल्यांकन ज्ञानी करते हैं, ज्यादा मूल्य गिनते हैं। इसका कारण क्या है कि इसका फल भी बहुत बड़ा है। ये जिन मार्ग की एक सुविधा है और सुंदरता भी है कि जो निर्धार करता है कि मेरे को आत्मकल्याण करना ही है, दूसरा कुछ नहीं करना है, उसका आत्मकल्याण हो ही जाता है, हुए बिना रहता नहीं, गारंटेड बात है। अनंत तीर्थंकरों ने उसकी गारंटी दी है, ऐसा समझ लेना। इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर भी जीव ऐसा निर्धार नहीं करता कि जीव की कम असरलता है क्या? हाँ जीव की बड़ी असरलता है, बहुत बड़ी असरलता है। जिसको समझने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, इसकी बात अलग है। जब बात ध्यान पर आई तब तो इस काम को उठा लेना चाहिए पूरी ताकत से। अगर हम नहीं उठाते हैं तो हम सीधा नहीं चलते, हमारे आत्महित में ही हम सीधा नहीं चलते हैं, जब हमारे आत्मकल्याण के विषय में हम सीधा सरल नहीं चलते तो दूसरे प्रसंग में हम सीधा चलते हैं, वो बात मान्य करने योग्य कहाँ से होगी? वो बात तो मानने वाली है ही नहीं। इस प्रकार की सरलता अनेक प्रकार के उच्च कोटि के परिणाम की श्रेणी, परिणाम की श्रेणी का कारण बन जाती है। इस प्रकार की सरलता अगर उत्पन्न हुई तो अनेक प्रकार की जो उच्च कोटि के परिणाम है, जिसकी परंपरा श्रेणी मैंने क्लास वाइज ऊपर ऊपर का वर्ग में तो आ जाएगा, प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, ऐसे क्लास होते हैं ना स्कूल में, ऐसे उच्च कोटि के जो परिणाम की श्रेणियां होती है उसका कारण ऐसी सरलता बन जाती है। मतलब क्या हुआ कि जिसको पारमार्थिक सरलता हुई उनको ऊपर ऊपर की भूमिका सहज आएगी। एक चाबी हाथ में आ गई तो मेरे को आत्मकल्याण के सिवा और कुछ नहीं करना, किसी को भी मुख्यता नहीं देनी है, जो भी मेरे अकल्याण के कारण मेरी नजर में आएंगे मैं सरलता से उसको छोड़ दूंगा, उसको छोड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई ताकत लगानी पड़े ऐसी नहीं होगी, सरलता से मैं उसको छोड़ दूंगा। मेरे को कहीं बंधना ही नहीं है ना, मैं तो मुक्त होने के लिए भी निकल गया, अभी मुझे कहीं बंधन में आना नहीं है, बस वो बंधेगा नहीं। जिसको छूटना है उसको बांधने वाला इस जगत में कोई है ही नहीं, और जिसको छूटना नहीं है उसको तीर्थंकर भी छुड़ा सकते नहीं है, वो भी फेल होते हैं। बात रही अपने आप की, अपने ऊपर आधारित बात है, दूसरे पर आधार उसका नहीं है। और अंततः मैंने आखिर में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति पूर्वक परम पद की प्राप्ति तक वो पहुंचाते हैं, पूर्ण पद की प्राप्ति तक वो सरलता पहुंचाती है। ये सरलता का आखिरी नतीजा है, सरलता से ये बनने वाला है, पूर्ण पद पाएगा। क्यों? टेढ़ा चलना ही नहीं है ना, आत्महित के विरुद्ध में जाना ही नहीं ना, फिर क्या बात है, तो उसको कुछ होने वाला है ही नहीं। आत्मार्थी जीव में सरलता प्राप्त होने के कारण से श्री गुरु के चाहे जैसे वचन में विश्वास रहता है, कहीं भी थोड़ी भी शंका नहीं पड़ती। देखो, आत्मार्थी जीव में सरलता प्राप्त होने के कारण से, ये भी एक सरलता का विषय है, श्री गुरु के वचन की प्रतीति, वो पहले संकेत में लिया ने, वचन की प्रतीति और आज्ञा रुचि और स्वच्छंद निरोध भक्ति, ये तीन गुण लिए हैं 751 में। वचन की प्रतीति, पूर्ण विश्वास, एक निष्ठा हो जाती है उसमें, और कहीं भी थोड़ी भी शंका नहीं पड़ती, अतः ऐसा फलित होता है कि सत्पुरुष के वचन में शंका होना ऐसी अयोग्यता को असरलता की प्रसिद्धि है, असरलता की ज्योतक है। इधर यूं क्यों लिखा, ऐसा यूं क्यों बोले, ऐसा ऐसा क्यों बात बात कर दिया, तुम्हारी असरलता है, तुमको शंका हुई, तुम्हारी सरलता गई तुम्हारी। जीव उतना नहीं देखता कि मैं कहीं इससे आगे हो गया क्या, मेरा ज्ञान इससे भी बढ़ गया क्या, ऐसा नहीं देखता, उसको शंका हो जाती है, कहीं ना कहीं शंका होती है, तो सरलता छूट गई, वो असरलता आ गई ना। पहले देख लो, स्वीकार करने के पहले कुछ भी देखो, पूरा देख लिया बात स्वीकार हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा होना चाहिए। ऐसे सरलता के विषय में बहुत सी बातें हैं, आगे भी कुछ दो पेज में बात रही है, कल के स्वाध्याय में लेंगे, एक घंटा में क्या दो घंटा में भी पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात है। सरलता का विषय ही ऐसा है, बहुत गहराई है।